नमस्कार भारत, 18 मई दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, क्या पाकिस्तान मानेगा फैसला?
ICJ ने पहले भी एक केस में कहा है कि जो उसके फैसले होते हैं इस तरह के प्रोविजनल मेजर्स में वो अनिवार्य हैं, बाध्य हैं पाकिस्तान को, उसे मानना है।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी योगी सरकार ने फिर किए बड़ी संख्या में तबादले। दुनिया जहान में आज चर्चा होगी चीन के नए सिल्क रूट की, क्या भारत को इससे चिंतित होना चाहिए?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंद महासागर में या मलक्का स्ट्रेट में चीन ऐसा सोच रहा हो कि वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाए?
लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार मानसी दाज से। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी पर सुनवाई पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज एक अहम फैसला देने वाला है। भारत ने न्यायालय से कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमरीका की राजदूत निकी हेली का कहना है कि अब तक इस बात के सबूत सामने नहीं आए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अमरीकी मीडिया के अनुसार ट्रंप ने इसी साल फरवरी में तत्कालीन FBI प्रमुख जेम्स कोमी को पूर्व सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और रूस के बीच संबंधों की जाँच रोकने के लिए कहा था। निकी हेली ने कहा,
Honestly, what I've seen is just a lot of hearsay, and I'm waiting to see evidence and proof. And I think that's what.
सच कहूँ तो मैंने जो देखा है वो है बस बातें, और मैं कुछ ठोस सबूत देखने का इंतजार कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हर कोई यही देखना चाहता है कि क्या इस आरोप का कोई सबूत है। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं हम में से कोई उधर नहीं था उस कमरे में। क्या सच है और क्या झूठ हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सबूत पेश किए जाएं, और बातें तो उसके बाद हो सकती हैं। बहुत अफवाहें हैं और समझना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की राजदूत निकी हेली के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इधर बीते साल हुए अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच करने के लिए खुफिया जांच एजेंसी FBI के पूर्व निदेशक रॉबर्ट मूलर को मुख्य अभियुक्ता नियुक्त कर दिया गया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेनस्टीन का कहना है कि जांच पर निगरानी रखने के लिए बाहर से किसी व्यक्ति को लाना सबके हित में था। ब्राजील की सरकार का कहना है कि वो वेनेजुएला की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट में मदद करने के लिए वहां अपना दूतावास फिर से खोलेगी। बीते साल दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने के कारण ब्राजील ने अपने राजदूत को वेनेजुएला से वापस बुला लिया था। ब्राजील के न्याय मंत्री राउल चंगमैन ने कहा कि वो वेनेजुएला में शांति स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ब्राजील चाहे वेनेजुएला की कितनी भी आलोचना करे, हमारे मूल्यों के आधार पर हमें वेनेजुएला के हालातों की चिंता है। हमें मानवाधिकार और लोगों की आज़ादी की चिंता है, और ब्राजील हमेशा से चाहता है कि वो इस संकट को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सके। ब्राजील के न्याय मंत्री राउल चंगमैन। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में एक शरिया अदालत ने दो समलैंगिक पुरुषों को यौन संबंध रखने के आरोप में सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए जाने की सजा सुनाई है। दोनों पुरुषों को रूढ़िवादी माने जाने वाले आचे प्रांत में कड़े इस्लामी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है और 85 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। समलैंगिकता का विरोध करने वालों ने इसी साल मार्च में दोनों युवकों को एक साथ बिस्तर पर पाया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने यूरोप से जाने वाली उड़ानों में कैबिन बैगेज में लैपटॉप और टैबलेट ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में फैसला लिया है। हालांकि विमान में खतरे संबंधी मुद्दे पर ब्रसेल्स में हुई चर्चा के बाद अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल दूसरे उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने कहा था कि 8 मुस्लिम बहुल देशों से उड़ानों पर इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर लगे प्रतिबंध का विस्तार यूरोप में करना चाहते हैं। BBC समाचार।
आज है 18 मई दिन गुरुवार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत पंकज प्रियदर्शी के साथ। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज दोपहर 3:30 बजे फैसला सुनाएगा। भारत ने जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, हालांकि ये एक अंतरिम फैसला होगा। भारत और पाकिस्तान ने सोमवार को अपनी अपनी दलीलें रखी थीं। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने अंतर्राष्ट्रीय लॉ कमीशन के प्रमुख रहे नरिंदर सिंह से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या ये फैसला पाकिस्तान पर बाध्यकारी है।
ये तो उम्मीद है कि जो भारत ने मांग की है कि उस कुलभूषण जाधव के एग्जीक्यूशन को रोका जाए फिलहाल, जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसी तरह का ऑर्डर पास करेगी। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस में, एक तो अर्जेंसी होनी चाहिए इस मैटर में, तो वो भारत ने दिखाई है। किसी भी स्टेज पर पाकिस्तान अपने जो प्रोसीजर है या प्रक्रिया है उसको आगे चला सकता है और उसको फांसी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जब तक उसके अधिकारों का फैसला नहीं हो जाता है, भारत के अधिकारों का भी, कि जब तक ये उस फैसले को रोका जाए।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने की बात कहती है तो क्या पाकिस्तान, पहली बात तो क्या बाध्य है और दूसरा क्या वो अमल करेगा?
आईसीजे ने पहले भी एक केस में कहा है कि जो उसके फैसले होते हैं इस तरह के प्रोविजनल मेजर्स में, वो अनिवार्य हैं, बाध्य हैं, पाकिस्तान को उसे मानना है।
लेकिन पाकिस्तान कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, सुरक्षा का मामला है, तो इस पर जो सैन्य अदालत का फैसला है वो अमल करने का उसे अधिकार है।
इस तरह के केसेस में जो प्रोविजनल मेजर्स के लिए लाए जाते हैं उसमें कोर्ट एक फाइनल फैसला नहीं देती है ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि इस टाइम प्राइमा फसाई कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं, और वो प्राइमा फसाई भारत ने दिखाया है कि वीना कन्वेंशन के में दोनों इंडिया पाकिस्तान पार्टी हैं और वीना कन्वेंशन का जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में, उसमें भी दोनों पार्टीज हैं। तो एंड पाकिस्तान ने जो चैलेंज किया है ज्यूरिस्डिक्शन को, वो इस फेज में डिसीजन नहीं होगा, वो एक अलग से उसके लिए हियरिंग होगी। और अगर पाकिस्तान को अपना आगे भी ऑब्जेक्शन रखना है ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में, तो उसके लिए जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो डिसाइड हो जाएगा इस फेज में।
अदालती फैसले का क्या असर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर देखते हैं, आगे किस तरह से लिया जाएगा?
जो फैसला आएगा इस केस में उससे कम से कम एक लीगल पोजिशन क्लियर हो जाएगी दोनों देशों के लिए। तो इसी मुद्दे पे आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम जब एक बार लीगल सिचुएशन क्लियर कर देगा कोर्ट, तो आगे जितने भी केसेस होंगे इसी टाइप के, तो रूल तो एक ही रहेगा फिर उसके लिए भी।
अगर ये अदालत का न्याय क्षेत्र नहीं साबित होता तो पाकिस्तान और भारत दोनों के पास क्या क्या विकल्प होंगे?
कोर्ट अगर कहता है, डिसाइड करता है कि ज्यूरिस्डिक्शन है केस सुनने के लिए, तब आएगा मेरिट्स के ऊपर, जो एक्चुअल मतलब प्रॉब्लम इशू है फिर उसके ऊपर हियरिंग होगी। तो ये तीन स्टेजेस में होगा ये केस। अगर कोर्ट बीच में कह देता है सेकंड स्टेज में कि ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तब तो केस वहीं पे बंद हो जाएगा।
भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तलखी भी आई है। चलिए नजर डालते हैं इस मामले पर। हमारे साथ स्टूडियो में मानसी मौजूद हैं। बताइए मानसी, कौन है कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं?
पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। पाकिस्तान ने कुलभूषण के कथित इकबालिया बयान का भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया था कि वो 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और फिर 2013 में रॉ में शामिल हुए थे। पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि कुलभूषण ने बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में अशांति फैलाने के मिशन पर थे।
और इस मामले में भारत का रुख क्या है?
भारत ने तो ये माना है कि कुलभूषण भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके जासूस होने की बात से भारत ने इनकार किया है। भारत के अनुसार वो ईरान में कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे और हो सकता है कि उनका अपहरण हुआ हो।
और अब फिलहाल क्या है स्थिति इस मामले में?
फिलहाल पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान एक भारतीय व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा था। भारत का आरोप है कि कुलभूषण को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और कौंसुलर उपलब्ध कराए जाने की भारत की 16 अपीलों को नजरअंदाज कर वियना संधि का उल्लंघन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से भारत ने अपील की है कि कुलभूषण की फांसी को रोका जाए।
और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ था?
15 मई को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की सुनवाई हुई थी और उसमें 11 जजों ने मामले की सुनवाई की। पहले भारत ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने का समय मिला। दोनों पक्षों को 90-90 मिनट का समय दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में विचार विमर्श करने के बाद अपना फैसला देगा, जिसकी तारीख आज है।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज कुलभूषण जाधव के मामले पर फैसला सुनाएगा। और अब चर्चा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिर रही योगी सरकार ने कल देर शाम 67 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। पिछले एक हफ्ते के भीतर आईपीएस स्तर के अफसरों की ये तीसरी बार तबादला सूची जारी हुई है। इससे पहले डीजीपी स्तर के अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
महज 6 दिन के भीतर 3 खेप में करीब 150 आईपीएस अधिकारियों के तबादले इस बात के संकेत हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार कितनी दबाव में है। कल देर शाम हुए तबादलों में 7 जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए। इनमें से कुछ जिलों में तो महज 3 दिन के भीतर ही पुलिस अधीक्षक 2 बार बदले गए। सोमवार को मथुरा में 2 व्यापारियों की हत्या और लूट के ताज़ा मामले में सरकार हरकत में आ गई है। बुधवार को एक और जहां व्यापारियों ने मथुरा बंद कर रखा था, वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और राज्य के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि जल्द ही अपराधी गिरफ्त में आएंगे।
व्यापारी वर्ग को विशेष तौर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि पैनिक करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमियां इसमें व्यवस्था में रह गई है उनको हम तुरंत दुरुस्त करेंगे और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कोई घटनाएं यहां पे ऐसी ना हो। जो अधिकारी में लापरवाह पाए जाएंगे मैं उनकी अभी समीक्षा करूंगा, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।
वहीं मथुरा के स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार राज्य को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश में लगी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदना परिवारों के प्रति प्रकट की है और नाराजगी भी व्यक्त की है और इसलिए आज मैं भी यहाँ हूँ और डीजीपी साहब भी आए हैं। आप पूरी समीक्षा भी वो कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे हों।
सरकार ने 14 मई को 31 और 12 मई को 39 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। बुधवार को इनमें से कुछ अधिकारियों का तबादला रद्द कर दिया गया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
सिर्फ अधिकारियों के स्थानांतरण से व्यवस्था नहीं सुधरती है, जो अपराधी है उन्हीं तत्वों के बल पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है।
सरकार ने पुलिस अधिकारियों के अलावा राज्य के प्रमुख सचिव गृह को भी बदल दिया है। देवाशीष पांडा की जगह आलोक कुमार को ये पद दिया गया है। गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास ही है। अब देखना यह है कि पुलिस महकमे की इतनी बड़ी अदला बदली अपराध को रोकने में कितनी कारगर होती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने ये कहते हुए राजनीति में आने का संकेत दिया था कि अगर भगवान चाहेंगे तो वो राजनीति में आएंगे। इसके बाद राजनीतिक हलकों और तमिलनाडु के लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा के साथ मिलकर राजनीतिक सफ़र शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की ये भी राय है कि रजनीकांत शायद राजनीति का रुख न करें। एक रिपोर्ट के साथ हैं इमरान कुरैशी।
पिछले 6 महीनों से तमिलनाडु की राजनीति में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति बन गई है। एक तरफ अन्ना डीएमके की नेता और मुख्यमंत्री रही जयललिता का देहांत हो गया और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और डीएमके के मुत्तुवेल करुणानिधि राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं, तो जाहिर है कि राज्य के राजनीतिक जीवन में एक तरह का खालीपन आ गया है। हालांकि डीएमके के एमके स्टालिन और अन्ना डीएमके के ओ पन्नीरसेल्वम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ऐसी परिस्थिति में रजनीकांत जैसे मशहूर अभिनेता अगर ये कहें कि भगवान चाहे तो वह राजनीतिक जीवन में आ सकते हैं तो जाहिर है कि ये बात चर्चा में ही रहेगी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के पूर्व प्रोफेसर S. जनकराजन कहते हैं, हाल में हुए परिवर्तनों के कारण उनके इशारे से ऐसा लग रहा है कि वो राजनीतिक जीवन में आने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वो सीधे बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन ये तो हो सकता है कि वो एक क्षेत्रीय पक्ष बनाकर बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये थे प्रोफेसर एस जनकराजन के शब्द। प्रोफेसर जनकराजन ये भी कहते हैं कि रजनीकांत ने जिस तरह से डीएमके और अन्ना डीएमके की आलोचना की है, उससे भी लोगों में शक पैदा हो गया है कि उनके बीजेपी के साथ जाने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में भी ये बात चर्चा में है कि पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में उनका सफर पहले रजनीकांत के साथ बातचीत के बाद ही शुरू किया था। उन्होंने रजनीकांत के साथ एक सेल्फी भी निकाली थी, ये कहते हुए कि वो उनके दोस्त हैं। राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी का मानना है कि पिछले दो दशक से वो राजनीति में आने की सोच रहे हैं और अभी उन पर बीजेपी के नेताओं से भारी दबाव पड़ रहा है। लेकिन मुरारी कहते हैं, हमें नहीं लगता कि वो राजनीति में आएंगे, हालांकि हर कोई मानता है कि वो एक अच्छे इंसान है। हाँ, उन्होंने कहा है कि 1996 में उनकी वजह से डीएमके ने चुनाव जीता है, लेकिन ये बात वो भूल रहे हैं कि उस समय जयललिता के खिलाफ विरोधी लहर बहुत बड़े पैमाने पर थी। ये थे एस मुरारी के शब्द। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि रजनीकांत की एमजी रामचंद्रन या जयललिता से तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एमजी रामचंद्रन बहुत सालों तक डीएमके के कार्यकर्ता थे जब वो बड़े फिल्म स्टार बन रहे थे, और जयललिता को मुख्यमंत्री बनने से पहले करीबन 8 साल पक्ष के लिए काम किया था। बहरहाल, राजनीति में कूदने से पहले ये तो रजनीकांत जरूर सोचेंगे कि वो क्या डीएमडीके के नेता विजयकांत जैसे बनेंगे या एक अलग तरह के नेता बनेंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
रजनीकांत को लेकर राजनीति में उनके प्रवेश को लेकर चर्चा। और अब समय है दुनिया जहान का। पिछले दिनों जब चीन की बहुचर्चित वन बेल्ट वन रोड परियोजना से नेपाल भी जुड़ गया, तो एक बार फिर ऐतिहासिक सिल्क रूट को जिंदा करने के चीन के इरादों पर सवाल उठना शुरू हो गया। क्या भारत को इससे चिंतित होना चाहिए, या ये नया सिल्क रूट छोटे बड़े कई देशों के बीच व्यापार का एक नया आयाम लेकर आएगा? इस हफ्ते दुनिया जहान में इसी पर चर्चा, सुनिए निखिल रंजन से।
दुनिया जहान।
हजारों साल पहले धरती के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में मिलाने का एक ऐसा रास्ता बना था जिसने शुरुआत तो कारोबार से की, लेकिन आगे चलकर संसार में कई देशों के बनने और बिगड़ने का जरिया बना। दुनिया आज भी उसे सिल्क रूट के नाम से जानती है। इतिहास। दो दिन पहले जब बीजिंग में दुनिया के 28 बड़े नेताओं और 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नए सिल्क रूट का ऐलान किया, तो उसे रोड ऑफ पीस यानी शांति का मार्ग कहा।
हमें बेल्ट एंड रोड को शांति का मार्ग बनाना चाहिए। हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ावा देना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद सहयोग पर आधारित हों और जो बिना गठबंधन वाले सहयोगियों में टकराव के बगैर बातचीत के लिए साझेदारी बनाएं। देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ ही विकास के रास्तों और सामाजिक तंत्र का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रमुख हितों और बड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। विकास सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है।
$124 अरब खर्च करके सड़क, पानी और पाइपलाइन के रास्तों से चीन ने एशिया को एक बार फिर यूरोप के थोड़ा और करीब लाने का सपना देखा है। पूर्वी एशिया मामलों के जानकार राहुल मिश्रा।
जो सिल्क रूट की जैसी अवधारणा हमारे दिमाग में है, जो 2000 साल पहले और 1000 साल पहले था, वैसा अब नहीं। पिछला जो सिल्क रूट था, एंशियंट सिल्क रूट, उसमें बहुत सारे देशों की भागीदारी थी और उसमें उसको मुख्य तौर से सिर्फ जो मर्चेंट्स थे वो चला रहे थे, उसमें देशों की जो सरकारें थी या जो शासक थे उनका उतना बड़ा रोल नहीं था। जबकि आज का जो वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें सबसे प्रमुख बात यही है कि ये मुख्य तौर से चीन द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बाकी देशों को आमंत्रित किया गया है कि वो भी इसके सदस्य बने। पिछले सिल्क रूट से अभी का डिफरेंस एक बहुत बड़ा ये है कि यहाँ एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से सारी चीजों को प्लान किया गया, जैसे कि फंडिंग कहाँ से आएगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, चीन की जो प्रदेशों की सरकारें हैं वो उसमें पैसा लगाएंगी, चीन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसमें पैसा लगा रही है।
২০১৩ में चीन ने जब वन बेल्ट वन रोड या फिर नए सिल्क रूट परियोजना की नींव रखी, तभी से लेकर दुनिया के कुछ देशों के मन में आशंकाएं उठने लगी
कि आज जब चीन वन बेल्ट वन रोड के नाम से एक नए रेशम राजमार्ग का निर्माण करने की महत्वाकांक्षी परियोजना बना रहा है, तो वो उन अपने आप स्वाभाविक कुदरती रूप से विकसित व्यापार पथों को अनदेखा सा कर, आप यूं कह लीजिए कि 6 लेन 8 लेन हाईवे टोल मार्ग की तरह खुद बनाना चाहता है, जिस पर प्रभुत्व उसका होगा, उस पर आवागमन उसकी इच्छा अनुसार चलेगा।
अमेरिका और जापान के साथ भारत भी उन देशों में शामिल है जिसे चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से परेशानी है। चीन ने परियोजना की शुरुआत में अपनी ओर से भारत के कुछ बंदरगाहों को भी इसमें जोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से गुजरता चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की आशंकाओं को बढ़ाने और उसे इस परियोजना से दूर करने के लिए काफी था।
देखिए, भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जिस रूप में ये है, अगर इसको भारत अपनी संस्कृति दे देता है, तो एक तरीके से हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई डिस्प्यूट है नहीं। पिछले कई दशकों से चीन ये कहता रहा है कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें कोई तीसरा देश कोई आर्थिक गतिविधि ना करे। आज चीन उसी को वायलेट कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान गलियारे को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके आना बहुत जरूरी नहीं था, बहुत सारे एस्पेक्ट से, बहुत सारे इसके डायमेंशन हैं, बहुत सारे इसके रूट्स हैं जिसपे वो पहले काम करता और फिर भारत को अपने साथ डिबेट और डिस्कशन में इन्वॉल्व करता और कहता कि भाई हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ले जाना चाहते हैं तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। दूसरा ये है कि भारत को ये चिंता है कि जो ओबोर का प्रोजेक्ट आया है उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो छोटे देश दक्षिण एशिया के जो देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, ये देश जब चीन से लोन लेंगे और मान लीजिए कि 10 साल बाद वो लोन वापस करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। चीन ने अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं किया। तीसरी चीज ये है कि हमने श्रीलंका के केस में देखा, हम्बनटोटा का जो पोर्ट है वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में श्रीलंका जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और इन सब के अलावा सामरिक तौर पे चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जो भारत को चिंता है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंद महासागर में या मलक्का स्ट्रेट में चीन ऐसा सोच रहा हो कि वहां पे मिलिट्री बेसिस बनाए, जैसे जिबूती में उन्होंने एक मिलिट्री बेस बनाया है।
जानकार मानते हैं कि चीन ने अपने देश में निर्माण और उत्पादन का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है कि उसके लिए तैयार माल को बेचना एक बड़ी समस्या है।
जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि चीन में ओवर प्रोडक्शन और ओवर कैपेसिटी की समस्याएं हो रही, उन्होंने जरूरत से ज्यादा क्योंकि प्रोड्यूस कर लिया है और उनकी कैपेसिटीज भी डेवलप हो गई, तो वो छोटे मार्केट्स को रीच करना चाहते हैं जहां पे उनका पहला व्यापार नहीं था। लेकिन इसके साथ ही चीन ये भी कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम इसको देखेंगे भी, कि रेनमिन भी जो चीन की मुद्रा है उसका भी इससे प्रसार होगा, तो एक तरह से चीन की मुद्रा और उसका दबदबा भी इस पूरे रीजन में बढ़े। और इन सारी बातों के अलावा अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव सफल होता है तो चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो वहाँ की सैन्य टुकड़ी है, वो अपना प्रेजेंस पूरे एरिया में बढ़ाएगा, तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये अमेरिका के जो एशिया में हेजेमनी है, जो उसका दबदबा है, उसको भी कहीं ना कहीं ये चुनौती देगा।
सदियों पहले सिल्क रूट के नाम से जिस संपर्क क्रांति का जन्म हुआ था, उसने पूरब और पश्चिम का मेल कराकर एक ऐसा मार्ग बनाया जिसका विस्तार कोरियाई प्रायद्वीप और जापान से लेकर भूमध्य सागर तक गया। आज फिर जब सिल्क रूट को जिंदा करने की कोशिश हो रही है तो लक्ष्य एक नई संपर्क क्रांति का ही है, लेकिन इस कालखंड में दुनिया बहुत बदल चुकी है। ये सवाल बहुतों के मन में है कि अब ये सड़क किस ओर जाएगी। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
दुनिया जहान निखिल रंजन पेश कर रहे थे। कैसे लगे आपको ये दुनिया जहान की कड़ी, जरूर बताइएगा हमें। और अब अखबारों की समीक्षा मानसी के साथ। जी मानसी,
पहली खबर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वो ऐसे छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देगी जिनकी अटेंडेंस जरूरी सीमा से कम होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वो नियमों में कोई छूट ना दे। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उपस्थिति कम हुई तो छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अखबार के अनुसार कश्मीर के स्कूली शिक्षा के निदेशक गुलाम नबी ईटू ने कहा है कि परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति कम से कम 90% होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा, माफ कीजिएगा, कुरान का हिस्सा नहीं है। केंद्र ने कहा है कि बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक मुद्दा ये नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय के भीतर मुस्लिम पुरुषों और वंचित महिलाओं के बीच की लड़ाई है। बुधवार को कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि ये एक 1400 साल पुरानी परंपरा है। तीन तलाक के मामले में कोर्ट की बेंच का कहना है कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है और इसे बाद में अपनाया गया था। संघ 9 महीने में बनाएगा नेता और देगा नेतागिरी की डिग्री भी। ये खबर छपी है दैनिक भास्कर अखबार के न्यूज ब्रीफ सेक्शन में। अखबार का कहना
संघ
है,
मतलब आरएसएस,
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 9 महीने में राजनीति में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को नेता बनाने के लिए कोर्स पढ़ाएगा, नेतागिरी की डिग्री भी देगा और ये कोर्स जो है मुंबई स्थित संघ की शाखा रामभाऊ महालगी प्रबोधनी शुरू करेगी। ये कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप और संस्था मिलकर चलाएगी। जनसत्ता में छपी एक खबर जो है वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से संबंधित। उन्होंने कहा है कि मेरे शासन में कुछ गलत ना हो, इसके लिए किसी कुर्बानी से उन्हें कोई संकोच नहीं है। जनसत्ता के साथ हुई एक बातचीत में उन्होंने कहा कि जब वादे किए जाते हैं तो हम सरकार से बाहर होते हैं और जब उन्हें पूरा करना होता है तो हम सरकार में होते हैं, जहां अपनी
जनता वादे पर भरोसा करे या नहीं।
जी, तो वो कहते हैं कि सरकार की अपनी बंदिशें होती हैं, फिलहाल बहुत सारी घोषणाओं पर काम चल रहा है और कभी कभी इसमें देर हो जाती है और लोगों को इंतजार करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और अब समय है खेल समाचारों का, और खेल समाचारों में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आईपीएल की, जहां कल देर रात तक चले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बारिश से प्रभावित मैच में पिछले साल की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली। सनराइजर्स ने पहले खेलते 128 रन बनाए, लेकिन बारिश के कारण मैच में बाधा आई और कोलकाता को 6 ओवरों में 48 रनों का लक्ष्य मिला, जो उसने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरा क्वालिफायर कल यानी शुक्रवार को मुंबई और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच रविवार को होगा। पुणे की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। और अब बाकी के खेल समाचार सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। शुरुआत टेनिस के साथ। इटालियन ओपन में कल का दिन रफाल नदाल के लिए अच्छा रहा। पहले ही सेट में इंजरी की वजह से रफाल नदाल के प्रतिद्वंदी निकोलस अल्मैग्रो रिटायर हो गए। इस तरह रफाल नदाल ने ये मैच अपने नाम किया। वहीं दूसरी तरफ भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार यारोस्लावा श्वेडोवा ने डबल्स मैच में ओल्गा सावचुक और एलिना स्वितोलिना को राउंड ऑफ 16 मैच में हराया और क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश किया। पिछले साल सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने फाइनल्स में जीत दर्ज की थी। अब बात क्रिकेट की। बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारत के वेस्ट इंडीज दौरे की शेड्यूल की घोषणा की। भारत का ये वेस्ट इंडीज का दौरा शुरू होगा 23 जून से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 23 जून को। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी पर सुनवाई पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज अहम फैसला देने वाला है। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमरीका की राजदूत निकी हेली का कहना है कि अब तक इस बात के सबूत सामने नहीं आए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। ब्राजील की सरकार का कहना है कि वो वेनेजुएला की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट में मदद करने के लिए वहां अपना दूतावास फिर से खोलेगी। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच करने के लिए खुफिया जांच एजेंसी FBI के पूर्व निदेशक रॉबर्ट मुलर को मुख्य अभियुक्ता नियुक्त कर दिया गया है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज, पंकज प्रियदर्शी और मानसी दास को अनुमति दीजिए। और इस बीच अगर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहना है तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।